ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंत देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंत देव देवर ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ जैन धर्म में जैनों की संस्कृति तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई संस्कृति है जो यह मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है। इसी संस्कृति का आश्रय लेकर संसारी भव्य प्राणी संसार से तिर जाते हैं। भव भव की प्रतीक्षा के उपरांत यह आर्यखंड की प्राप्ति और इस संस्कृति में स्नपित होकर के आत्म कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह संस्कृति धर्ममय होने से हमारी आत्मा को निर्मल बनाने की योग्यता इसमें है। संसारी प्राणी चाहता है कि मैं आत्मा का आनंद लुटा सकूं और आत्मानंद बन करके आत्मानुभूति कर सकूं, जो मानव पर्याय में यह आनंद ही धर्म है, उस धर्म का रसा स्वादन कर सकूं, इस प्रकार की अपेक्षा उसके मन में अवश्य होती है। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए जब भावना भाई जाती है, भावना भाने से भी इस अपेक्षा की पूर्ति होती है, और जब हम भावना न भाते हुए ऐसे ही मंद कषायवान रहते हैं और एकाएक ही हमें आर्यखंड की प्राप्ति होती है, ये स्वाभाविक रूप से होती है। दो तरह से हमें इस आर्यखंड का लाभ मिलता है। आर्यखंड में पैदा होने वाले प्रत्येक मानव को ये समझना बहुत आवश्यक है कि यहाँ हम क्यों जन्म लेते हैं, किस कारण से जन्म लिए, यह आर्यखंड आर्यखंड के मानव को आर्य बनने के लिए एक सभ्य आर्य मनुष्य बनने के लिए इस खंड की प्राप्ति होती है और इसमें मनुष्य को चिंतनशील बनना परम आवश्यक होता है। मुझे आर्य बनना है, आर्यखंड में जन्म लेकर म्लेच्छवत आचरण नहीं करना है। म्लेच्छों में उनका जीवन दुखमय है। कारण क्या है इसमें? कारण यही है कि वो परमार्थ को स्पर्श नहीं कर सकते। परमार्थ को वो चख नहीं सकते, रसास्वादन ले नहीं सकते। बाकी जीवन तो कॉमन है, आर्यों का जीवन और म्लेच्छों का जीवन। हो सकता है ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा हो म्लेच्छ होकर के भी, हो सकता है शाकाहारी हो सकता है सभ्य नागरिकमय जीवन जी रहा हो सकता है आर्यखंड के जो सुसभ्य नागरिक हैं उसके समान ही उसकी बाहरी जीवनचर्या हो। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आज विदेशों में शाकाहारी अधिक हैं, जबकि वहां पर कोई परमार्थ की चर्चा नहीं होती, धर्म की चर्चा नहीं होती, हिंसा अहिंसा की चर्चा नहीं होती, वे शाकाहारी बनते जा रहे हैं। इसमें कारण क्या है? धर्म के दृष्टिकोण से शाकाहारी बनना अलग है और एक शारीरिक धर्म सुरक्षित रहे, शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से शाकाहारी बनना अलग बात है। शरीर पुद्गल वस्तु है, इस पुद्गल वस्तु के संबंध में आत्मा अनादिकाल से सेवक बना हुआ है। शरीर को सावकार बनाया है और आत्मा को सेवक बनाया है। खुद सेवक हो गया है और दूसरे को सावकार बनाया है। ये भावों में हमारी रीति चली आ रही है, खुद नौकर रहना और दूसरे को सावकार बनकर जीवन जीना। किस भाव में नहीं हुआ? सभी भाव में, अनंत भावों में हुआ है। हम अशुद्ध खाए, अभक्ष्य खाए, मांसाहार खाए तो शरीर के लिए ही खाए। हम शाकाहारी बने, बौद्ध जीवों की हिंसा नहीं की, शाकाहारी बने, बहुत कुछ जीवन में जो बड़ी हिंसा थी वो छूट गई, लेकिन उद्देश्य नहीं था कि हिंसा छूटे इसलिए हम शाकाहारी बने। शरीर को दृष्टिकोण, शरीर में दृष्टि रख करके ही हम शाकाहारी बन गए। तो शरीर को दृष्टि में रख करके जहां कुछ काम किया जाता है और वह अहिंसामय भी हो तो धर्म की कोटि में नहीं आता। आज विदेशों में जो भारत की अपेक्षा से 70-80% लोग शाकाहारी बन गए हैं और भारत में 80% मांसाहारी आज हैं, जबकि ये कहना चाहिए कि अब आर्यखंड म्लेच्छखंड हो गया है और म्लेच्छखंड आर्यखंड बनने जा रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि में थोड़े सी फर्क हो जाए तो आर्यखंड बन जाए। जो शरीर के लिए शाकाहार को अपनाया है वही आत्मा के प्रति, अहिंसा के प्रति, धर्म के प्रति शाकाहार को अपना करके यदि चलते हैं तो जितने भी आसपास के देश हैं जो कि आर्य म्लेच्छ खंड के कोटि में आते हैं वे आज आर्य खंड के कोटि में आ जाएंगे। शुद्ध आर्य खंड के आर्य मनुष्य विदेशों में हैं और शुद्ध आर्य खंड में अशुद्ध आर्य मनुष्य म्लेच्छ हैं। ये हो जाएगा। म्लेच्छों का अनुकरण यदि आर्य करता है तो वो आर्य नहीं म्लेच्छ ही है। म्लेच्छ आर्य खंड का अनुकरण करे ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये वो इधर आ जाए तो यहाँ धर्म मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, एक नया गिफ्ट मिलेगा जो अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ था, उस प्रकार का गिफ्ट मिलेगा आर्यखंड में आने के बाद म्लेच्छों के लिए। लेकिन आर्य मनुष्य ही अपनी संस्कृति और सभ्यता को, धर्म को, परमार्थ को और अपनी नागरिकता को भूलकर म्लेच्छ नागरिकता की ओर बढ़ेंगे, म्लेच्छ संस्कृति की सभ्यता की ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? कुछ होगा क्या? उपलब्धि? कुछ नई उपलब्धि? महाराज मिलता तो है नई फैशन गिफ्ट में मिलता है। शरीर को लेकर, शारीरिक सुख दुखों को लेकर हमने कितने कितने फैशन नहीं किए हैं अनादि से है? शरीर को लेकर के कितने फैशन नहीं कर पाए हैं, सभी किया है। अब कितना फैशन करना चाहोगे? और भी उसमें कुछ संशोधन चल रहा है क्या? नए नए शरीर के फैशनों को लेकर के संशोधन हो रहा है क्या? शरीर का फैशन करने से आत्मा को कोई सुख नहीं मिलना चाहिए, आत्मा को तो दुख मिलना चाहिए। शरीर जड़ वस्तु है, इस जड़ वस्तु को श्रृंगार करके आत्मा यदि सुख की अनुभूति कर रहा है तो वह आत्मा बहुत अज्ञानी है, बहुत अज्ञान में है, बहुत अज्ञानी है, उसे बहुत समझना शेष है। ऐसा एक बार क्यों ना हो कि आत्मा की आराधना में नई नई फैशन और नए नए संशोधन हो जाए हाँ, उसी संशोधन के लिए हम बैठे हैं और आगामी 10 दिन के लिए घर छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इतनी शक्ति आई है कि उस शक्ति को कोई आप पीछे खिसका नहीं सकता। आत्मबल बढ़ गया है, घर वाले सभी आकर के उठाए तो हम नहीं उठ सकते। इतनी तो आत्मशक्ति बढ़ गई है। थोड़ी सी आत्मा के बारे में, आत्म तत्व की चर्चा करने से आपको कितना सारा आत्मबल बढ़ चुका है। क्या इसमें आप तरक्की करना नहीं चाहेंगे? जीवन के कुछ दिन है सुख दुख के, उसमें सुख का मार्ग कौन सा है इसी को खोज करके आगे बढ़ना है और इस जीवन के 10 दिनों को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, आनंद की यात्रा शेष जीवन में हो, इस भावना के साथ यदि हम जीवन जीते हैं तो जी नहीं सकते क्या? जी सकते हैं ना। आप कितने साल रह गए हैं, कितना जीना है, उसमें भी शारीरिक फैशन फैशन फैशन। कब तक शरीर के संबंध में क्या क्या सुख अनुभव करोगे? बस बहुत हो गया, अनादिकाल से शरीर के पीछे रहे, अब आत्मा के पीछे शेष जीवन व्यतीत करे तो कितना बड़ा लाभ पहुंच सकता है आत्मा को। आत्मा चतुर्गति से मुक्त होने का मार्ग पा सकता है शेष जीवन में। अपने आचार्यों ने जैन परंपरा में दो तरह से संस्कार की बातें की है। श्रमण धर्म के लिए श्रमणों को कैसे संस्कार दें और श्रावक धर्म में श्रावकों को कैसे संस्कार दें, ये बातें उन्होंने की है। और जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं, दो ही धर्म को लेकर के, दो ही धर्म को उद्देश्य बना करके लिखे गए, चाहे वो कर्म सिद्धांत हो, चाहे कर्णानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, चरणानुयोग हो और कर्णानुयोग हो, चारों अनुयोग के ग्रंथ दो संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए, दो संस्कृति को सभ्य संस्कृतमय बनाने के लिए ग्रंथ लिखे गए। उन्हीं ग्रंथों का हम स्वाध्याय करके आगे बढ़ते हैं, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम सुसंस्कारित होते हैं। और आज हमें सुसंस्कारित होने के लिए 10 दिन के लिए सोचना है। जो आचार्यों ने हमारे लिए जो ये ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों के आधार से हम 10 दिन में क्या अपनी आत्मा को संस्कारित कर सकते हैं, इस बात पर विचार करना है। क्या आपका मन राजी हो जाएगा विचार करने के लिए? और राजी तत्काल होना है, लेट नहीं करना है। कैसे राजी होना है? पहले इस बात के लिए राजी होना है कि 10 दिन घर नहीं जाएंगे। क्योंकि घर शरीर के लिए है और धर्म आत्मा के लिए। शरीर के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे 10 दिन, केवल 10 दिन। 11वें दिन जल्दी जल्दी दौड़ के जाए तो भी 10 दिन यदि घर छूटेगा तो क्यों छूटेगा, क्यों छोड़े, इस बारे में विचार करना आवश्यक है। शास्त्रों में लिखा है, श्रावक यदि वह सम्यक दृष्टि भी बनता है या अनुवृत्ति भी बनता है, तो वह सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति दोनों ही साधक संयम की ओर जाने वाले माने जाते हैं। संयम की ओर ही उनका लक्ष्य रहता है, मुनि बनने का लक्ष्य रहता है। और मुनि नहीं बन पाते हैं, इसलिए चौथे पंचम गुणस्थान में अटके रहते हैं। अटके हुए समय पर वे साधना करते हैं। जब तक वो अटके रहते हैं तब तक साधक बने रहते हैं, साधना उनकी मुनि दशा की साधना चलती है। पंचम गुणस्थान मुनि अवस्था की साधना का गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान पंचम गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए या छठे गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा का स्थान है, आस्था का स्थान है। यहाँ पर आस्था होती है, यहाँ संयम की ओर बढ़ने का एक लक्ष्य लेकर के चौथे गुणस्थान में बैठा रहता है, अपनी अपने मन को, अपनी आत्मा को निर्मल बनाता हुआ, सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाता हुआ, वह चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्व की साधना करता रहता है, उनके जीवन में 25 दोष नहीं लगते सम्यक दर्शन में। ऐसा साधक चतुर्थ गुण स्थान वाला श्रावक और श्राविकाएं मानी जाती है। अपन ने क्या इस बात को अब तक समझा है कि अपन चतुर्थ गुण स्थान में रहते हैं तो आत्मा के साधना के लिए रहते हैं, आत्मा की आस्था को लेकर के बैठे हुए होते हैं और संयम के प्रति हमारी प्रगाढ़ आस्था होती है। ऐसा क्या हमने आज तक विचार किया है? नहीं किया है। हमने आज तक यही विचार किया है कि प्रगाढ़ आत्म सुख में नहीं, शरीर सुख में प्रगाढ़ आस्था रखकर शरीर सुख को कैसे साधना चाहिए उसको लेकर के बैठे रहते हैं। सारे हमारे जीवन के दिन, सारा जीवन का यह समय उसी ओर बढ़ता रहता है, शरीर के सुख को ध्येय में रखते हुए उसको पाने के लिए। एक बार आत्मा की ओर भी बढ़ करके हम देख सकते हैं कि नहीं? कितने दिन? केवल 10 दिन। 10 दिन के लिए घर त्यागने को बताया जाता है। 10 दिन स्त्रियां कैसी रहीं, रहे, ये बताते हैं कि स्त्रियां आरिकाओं के समान चर्या निभाएं। इसलिए 10 दिन ये दशलक्षण के 10 दिन, 10 पर्व के दिन आते हैं। पर्व यानी वह कालखंड जहाँ पर हम आरिका बनने की शिक्षा लेते हैं। दशलक्षण यानी आध्यात्मिक पर्व आत्मा के लिए समर्पित 10 दिनों को किया जाता है। आत्मा के लिए समर्पित किया जाता है 10 दिनों को। स्त्रियां आरिकाओं के व्रतों को निभाने के लिए 10 दिन समर्पित करती हैं और पुरुष मुनिचर्या को कैसे रखा जाता है मुनि बनने पर, यानी पूर्णतः जो वह 365 दिन वर्ष में जो आते हैं ऐसी साधना वो नहीं कर पाता जो 10 दिन में कर सकता है, क्योंकि सानिध्य में जा करके ये करता है। किसके सानिध्य में? सत्संग में जा करके, मुनियों के सानिध्य में जाकर के यदि दशलक्षण पर्व मनाया जाता है तो वह सबसे बड़ी उत्कृष्ट पर्व मनाना हुआ। आज हम देखते हैं वर्तमान में सुधा सागर महाराज के सानिध्य में हजारों लोग पहुंच जाते हैं दशलक्षण मनाने के लिए 10 दिन घर छोड़ करके। जोधपुर में 2500 लोग इकट्ठे हुए थे, घर नहीं जाते 10 दिन, धोती दुपट्टा लेकर के जाते हैं और कोई भी परिग्रह लेकर के नहीं जाते, मोबाइल वगैरह भी घर में छोड़ करके चले जाते हैं। प्रति वर्ष जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल चले गए और दूसरे साल नहीं चले गए। एक साल जो जाएगा वो अगले साल जाने की इच्छा नियम से करेगा ही, आकर्षण बढ़ता है उसमें। आत्मा के संस्कार जब बढ़ते हैं, आत्मा की रुचि जब लगती है, आत्मा की लगन जब बढ़ जाती है अपने जीवन में, अपने आप मन कहता है कि दशलक्षण यहाँ गांव में मनाना नीरस लगता है, चलो सत्संग में चलते, ये भाव आ जाते हैं। अपन भी यहाँ दक्षिण में इस प्रथा को क्या प्रयोग में ला नहीं सकते? वो भी तो श्रावक ही हैं, वो भी व्यापारी हैं, वो भी नौकरस्थ हैं, सभी कुछ हैं। अपने को केवल साल में 10 दिन निकालना है। एक दिन जाने के लिए लगता है, एक दिन आने के लिए लगता है, कहीं भी भारत में हो तो ये 2 दिन और वहां रहना 10 दिन, 12 दिन निकालना है। 12 दिन छुट्टी संसार के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, दुकान के लिए, नौकरी के लिए छुट्टी। कितनी सुंदर बात है कि केवल आत्मा ही आत्मा की बातें करने के लिए 10 दिन मिल जाए तो इस 10 दिन का प्रभाव पूरे साल भर आपको ताजा बना रहता है। भूलेंगे नहीं आप। और यदि ऐसा हम यदि कर नहीं सकते हैं तो करने का प्रयत्न करना चाहिए, हो सकता है पहले से ही उसकी तैयारी चलना चाहिए कि मुझे 10 दिन निकालना ही है। हाँ, साहस जुटाना चाहिए, साहस, साहसी तो है। आर्यखंड के आर्य मनुष्य साहसी नहीं रहेंगे तो आर्य भी कैसे कहलाएंगे फिर? साहस तो करना पड़ेगा, चाहे साहस आज कर लो चाहे मरण के अंत समय में कर लो, मरण तो आना ही है। आज साहस करेंगे तो भी मरना है, कभी भविष्य में साहस करेंगे तो भी मरना है। अतः अच्छा तो यही है, भविष्य में साहस करने की अपेक्षा आज ही साहस कर ले, हो जाएगा। 10 दिन घर जाने न जाने का मतलब ये है कि आप केवल सोने के लिए जाएंगे, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं इनको, आप लोग कहीं भी सो सकते हैं। इन 10 दिनों के भीतर ऑफिस याद आ गया तो शरीर की सेवा याद आ गई। ऑफिस किसका साधन? शरीर सेवा का साधन। तो फिर 10 लक्षण में आपने आत्मा को क्या मनाया? शरीर को तो मनाया, केवल एक पूजा करने से और इधर के चावल इस पाटे से पाटे पर से उठाकर इस पाटे पर रखने से धर्म हुआ क्या? नहीं, ऐसा धर्म नहीं होता। हमारे संस्कारों को तोड़ना, 10 दिन तक तोड़ने में लगे रहना, अच्छी तरह से तोड़ना, जो हम साल भर नहीं तोड़ सकते, उन बुरे संस्कारों को तोड़ने का समय है 10 लक्षण पर्व। इस पर्व का नाम आध्यात्मिक पर्व भी है, आत्मा की ही साधना होनी चाहिए। हम आत्मा की साधना की ओर ध्यान देंगे तो ये सच्चा पर्व का मनाना हुआ, अन्यथा पूजा मात्र यह 10 लक्षणिक पर्व नहीं कहलाता। क्या कहलाएगा? नहीं कहलाता। केवल पूजा करने से क्या मतलब है? देवलोग भी पूजा कर रहे हैं लेकिन 10 लक्षण नहीं मना सकते हो। हो सकता है इन 10 लक्षण पर्वों में देवलोग सभी समोशरण में पहुंचते हो। 160 विधि क्षेत्रों में अभी 20 क्षेत्रों में तो समोशरण 20 विद्यमान है, सब समोशरण में पहुंच गया, अलग अलग देव अलग अलग तीर्थंकर के पास अलग अलग जा करके मजा ले रहे हैं। एक देव 20 समोशरण में एक साथ पहुंच सकता है विक्रिया से और 20 जगह पूजन कर सकता है, 20 जगह अपनी इधर की थाली को इधर कर सकता है, लेकिन मिला क्या? आत्मा की बातें हुई क्या? आत्मा का संस्कार हुआ क्या उसमें? आत्मा का संस्कार पूजन और भक्ति से नहीं, साधना से। किसकी साधना से? त्याग की साधना से। कैसा त्याग? 10 दिन के लिए समस्त प्रकार के आरंभ सारंभ उद्योग व्यापार खेती घर संसार परिवार लेना देना सब का त्याग। छुट्टी यानी छुट्टी, किसी से हम नहीं जुड़े हुए हैं घर से, छुट्टी यानी छुट्टी, किसी पर के ऊपर सौंप करके आना है। फैक्ट्री हो तो पर के लिए सौंपो, नौकरी हो तो छुट्टी ले लो, और घर का काम हो कोई भी तो घर में कोई हो तो उनके लिए सौंपो या तो ताला लगा दो। ऐसा करके तो वहां पर 2500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यानी आज भी पंचम काल में श्रावक धर्म में विकास हो रहा है आर्यखंड में, कहीं न कहीं इस भौतिकता की चकाचौंध में देख रहे हैं लोग, इसमें कुछ नहीं है, अब अनुभव में आ रहा है। विदेशी लोग इस अनुभव को लेने के लिए विदेशों से लौटकर यहाँ आ रहे हैं, और हम भौतिकता में डूबकर हम विदेश की ओर जा रहे हैं। विदेश में ये संस्कृति, ये बातें, ये आत्मा, आत्म तत्व की चर्चा, ये आत्म साधना नहीं मिल सकती, वो इधर आ रहे हैं। धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्वों को समझने के लिए अब विदेशी लोग इच्छा करने लगे हैं, उनको जिज्ञासा प्राप्त हो गई कि क्या है ये। भारत में अनेक कष्टों के बीच में रह करके भी सुख की अनुभूति करने का जो मार्ग है वो क्या है, किसकी बात है वो। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा है भी या नहीं अपने शरीर में ये भी पता नहीं है, लेकिन किसके बल पर ये भारतीय लोग जो कि समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर दिगंबर होकर के त्याग तपस्या करते हैं, ये कौन सी संस्कृति है वहाँ। वो सुखमय रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, आखिर ध्यान में करते क्या हैं, कौन सा आनंद आता है आत्मा का, यही विचार करते हैं। और ये समझ में नहीं आता है तो इसको समझने के लिए उस खंड को छोड़कर इस खंड में आना पड़ता है, खंड को छोड़कर खंड में आना पड़ता है और अखंड पाना पड़ता है। जो अखंड सुख है, अविनाशी सुख है, वो भीतर है, आत्मा में है, उसको कैसे पाना होता है, इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान, इसके संस्कार, इसका पूरी साधना यहीं पर मिल सकती है। बहुत विचार में पड़ गया क्या कि 10 दिन कैसे छोड़े। इस साल अगर पुरुषार्थ करोगे तो अगले साल भी होगा ही होगा, निश्चित होगा। गए साल ऐसा किया था, ऐसा किया था, उसका अनुभव रहता है, तो इस साल ऐसा करना और विशेष रूप से ये भी करना और ये भी करना, इस साल से अगले साल तरक्की होगी। क्या तरंग करेंगे तरक्की? हर साल घर छोड़ना, इस साल छोड़ो या न छोड़ो, हर साल छोड़ने का लियो। इस साल साहस करो पूरी तरह से, 10 दिन घर नहीं जाएंगे और घर को भूलेंगे, 10 दिन पूरी तरह से जैसे मुनि महाराज अपने जीवन में कभी भी पंच पापों को नहीं करते, कभी भी उनको घर याद नहीं आता, व्यापार उद्योग उनका कुछ भी नहीं होता, इतना सब कुछ छोड़ करके वैसे कैसे वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें से 10 दिन हम निकाल करके मुनिवत जीवन जी सकते हैं क्या, नहीं, इसको क्या देख नहीं सकते। इससे धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति, परंपरा के प्रति, ये पर्व परंपरा के प्रति प्रगाढ़ आस्था जगती है। ये हमें करना चाहिए, करना चाहिए। कल तक बस नाम देना है, कितने नाम इकट्ठे होते देखना है। कुछ तो एक सभा बननी चाहिए आनंद लूटने के लिए, 3-4 लोगों से काम नहीं चलेगा, ये एक सभा होनी चाहिए जिसके भीतर आनंद लूटे हम। सामायिक करने के लिए सीखना है, मुनि महाराज कैसे सामायिक करते, मुनि महाराज दिन भर कैसे परिणामों को रखते, कैसे चलते, कैसे फिरते, कैसे खाते, प्रत्येक बात की हमें जानकारी लेनी है, प्रत्येक बात का संस्कार प्राप्त करना है। दिन भर आरिकाएं कैसी रहती, इसका संस्कार आपको लेना है, आपको मुनिवत संस्कार लेना है। पर आप लोगों के लिए बिल्कुल 10 दिन के लिए घर नहीं जाना है, आप लोग केवल सोने के लिए जाएंगे और खाना बना करके तैयार करके आएंगे, शुद्ध भोजन बनाना, या तो शुद्ध भोजन कहीं एक जगह करना हो, हाँ सबके लिए हो जाएगा वो, तो भोजन की तो समस्या ही नहीं है, केवल जाकर के खाना और आना, साधना करना, यहाँ बैठ करके क्या करना, यदि महाराज नहीं है पंडाल में तो आप अपना स्वाध्याय तत्व चर्चा में मग्न रहेंगे, या तो ध्यान में मग्न रहेंगे, जिसको जिसमें रुचि लग रही है साधना में, उस साधना में मग्न रहेंगे, घर का विचार नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, और मोबाइल भी नहीं रखेंगे, यानी उधर का विकल्प इधर नहीं आना, इधर का विकल्प उधर नहीं जाना। मुनिवत मतलब मुनि महाराज जैसे घर से संपर्क करने के लिए मोबाइल रखते हैं क्या, और घर वाले मोबाइल रखते हैं तो यहाँ मोबाइल नहीं है इसलिए संपर्क नहीं हो पाता, तो जैसे मुनि महाराज रहते हैं वैसा ही करना है, पूरी चर्या मुनिवत। तो 10 दिन के ब्रह्मचारी, लेकिन उस ब्रह्मचर्य अवस्था में भी मुनि चर्या निभाई जा सकती है। 10 दिन आपने पंच पापों को पूर्णतः त्याग कर दिया, ये क्या कम बात है? ये साधना देवगति में नहीं हो सकती, किसी भी समोचरण में और किसी भी कैसा भी सानिध्य सत्संग पाले, तीर्थंकरों के चरणों में भी जाकर के बैठे हैं, तो ये साधना जो आप लोग 10 दिन करने वाले हैं वो देव लोग नहीं कर सकते। कौन बड़भागी, देव तरस रहे हैं, हमको मनुष्य भव मिलता और कोल्हापुर में जन्म लेते तो हम तो पंडाल छोड़ करके नहीं जाते। देवों को भक्ति के अलावा कुछ भी तो नहीं है, इसलिए देवगति पूजा प्रदान है, भक्ति प्रदान है, मनुष्य गति भक्ति प्रदान पूजा प्रदान नहीं, ये तो ओवर ड्यूटी है उनके लिए, मुख्य ड्यूटी तो साधना है। पूजा को क्या मानो, ओवर ड्यूटी, मुख्य ड्यूटी नहीं, और साधना को क्या मानो, मुख्य ड्यूटी। साधना किसकी साधना, संयम की साधना, कैसे संयम, हमारे जीवन में से कितने जीवन पाप से बच गए, जीवन के ये दिन कितने पाप से बच गए, ये साधना है। कम से कम हिंसा, कम से कम आरंभ सारंभ, क्योंकि ये कर्म भूमि है, देवगति कर्म भूमि नहीं है, उनको आरंभ सारंभ उद्योग हिंसा कुछ नहीं करनी पड़ती, उनके गले में ही रसोई घर है, उनके गले में ही रसोई घर है, और रसोई घर में रस ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है, ये गला ही रसोई घर, और जो अमृत होता है उत्पन्न होता है गले में, वही रसोई। आपको तो सब कुछ करना पड़ता है, और ये करने के लिए ही कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जो हम कमाते हैं वो अद्भुत कमाते हैं, और कमाए हुए उसको बैठकर खाने के लिए हम स्वर्ग लोक में जाते हैं। यहां 10 दिन कमाते हैं, लेकिन वहां पर 10 सागरोपम तक अनुभव करते, बैठे 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 मिलता है वहां, यहां बना के खाना पड़ता है, वहां पर बनाए बिना ऑटोमेटिक तैयार होता है, और कहीं बाहर भी नहीं, अंदर ही अंदर तैयार होता है, और अंदर ही अंदर सुखानुभूति होने लगती है। तो उत्सुकता को बढ़ाना है, थोड़ा और साहस बढ़ाना है, और साहस के साथ 10 दिन देखना है क्या करना है। एक संख्या, निर्दिष्ट संख्या बनेगी, एक विशिष्ट संख्या बनेगी तो अपन सोच सकते हैं, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए, जितने लोग इतने भी हो जाएं तो हो सकता है, बैठे हुए लोग तैयार हो जाएं। हाँ मिल गया है। ठीक ठीक बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ वो ठीक है। भोजन की व्यवस्था यहाँ और वहाँ, वहाँ कब रहेंगे? बस थोड़े समय के लिए रहेंगे वहाँ, बाकी तो कार्यक्रम यहीं चलना है। पूजन का यहीं हुआ, प्रवचन का भी यही हुआ, सामायिक आदि का भी। हाँ सामायिक में हाँ वो तो ठीक। हाँ नहीं एक एक संख्या बना लो और फिर अभी तो है समय, मैं उसमें क्या क्या करना है एक हम लिस्ट बना करके आपको देंगे। ये टाइम में ये करना है, आपकी चर्या दिन भर की कैसी रहेगी, किस समय क्या, ये एक टाइम टेबल बना देंगे। पहला एक लिस्ट तैयार करो, लिस्ट तैयार करो आप लोग भी। हाँ जो ध्यान का समय रहेगा ना, ध्यान का समय यही रहेगा, ध्यान का टाइमिंग फिक्स बाद में करेंगे। नहीं वो पूजन के समय को छोड़कर और प्रवचन के समय को छोड़कर अन्य टाइम ही फिक्स करना पड़ेगा ना। एक टाइम कोई भी उसमें हो सकता है, जो हमें समय कैसा करना चाहिए इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर सकते। कोई भी टाइम, लेकिन प्रवचन का टाइम तो प्रवचन है और पूजन का टाइम तो पूजन का है। अब उसमें से कौन सा आप निकाल सकते हैं, एक घंटा कम से कम, एक घंटा चाहिए समय के लिए। ध्यान कैसे किया जाता है, समय कैसा करना चाहिए अपन सीखेंगे। प्रतिक्रमण तो कभी भी कर सकते हैं आप, ध्यान के टाइम में प्रतिक्रमण नहीं होता। ध्यान यानी ध्यान में बैठकर क्या सोचना चाहिए, कैसे मन को रखना चाहिए, ये बातें मुख्य हैं। हाँ सुबह कितने बजे, बहुत जल्दी भी तो नहीं हो सकता है ना। वो तो बाद में सोचेंगे। टाइम फिक्स जो है ना, शाम को भी लिया जा सकता है या सुबह भी लिया जा सकता है, जैसे गुरु भक्ति आदि होती है ना, उससे पहले भी हो सकता है। थोड़ा सा जल्दी आएंगे तो गुरु भक्ति के टाइम में, परंतु जो घर त्यागते हैं ना उन्हीं के लिए मात्र है। हाँ उनको ही ध्यान लगेगा ना, नहीं तो दूसरे फालतू लोग बैठेंगे तो ध्यान उधर और इधर बैठे हैं, ऐसा होता है इसलिए। तो कुछ ये नाम नोट करना पहला होना चाहिए, कल से करेंगे ये। देखो अधिक से अधिक लोग हो जाए। गुरु भक्ति के बाद का गुरु भक्ति जरा जल्दी करके और टाइम निकाल लेंगे, पौन घंटा लगभग ध्यान का। हाँ गुरु भक्ति यही होगी शाम को और ध्यान भी यही होगा, ऐसा कर सकते पर टाइम फिक्स करेंगे कल, कितने बजे से गुरु भक्ति और कितने बजे से ध्यान, ये फिक्स करेंगे नंतर। आने जाने के लिए दिक्कत भी नहीं रहेगी। जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। कहां पर कहां यहाँ आएंगे तो जा सकते हैं 10 दिन के बाद, परंतु जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे तो आ ही नहीं सकते। कहाँ? हाँ वही तो बता रहे हैं, वहीं जाने के लिए और नहीं आने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वहीं जाने के लिए और वहाँ से नहीं आने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ आए हैं तो 10 दिन जाना नहीं। कुछ भी मतलब बहुत बड़ी समस्या किसी को हो जाए, ऐसी समस्या में बिल्कुल परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा। बीच में विदाउट परमिशन कोई भी जाएगा नहीं। और अनुशासन सीखेंगे, मुनि की चर्या में जो अनुशासन होता है उस अनुशासन के साथ अपन चर्या बनाएंगे, और आरिकाओं का जो अनुशासन होता है उस अनुशासन के साथ आप लोग अपनी चर्या निभाएंगे। तो इसका अनुशासन तो हम नहीं दे सकते, कोई आरिका चाहिए था, एक आध बन जाओ डुप्लीकेट 10 दिन के लिए, जो आरिका के पास रही हैं और देखा है उनकी चर्या, उनकी चर्या को सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक आध तो आगे खड़े होना चाहिए, एक आध तो कैप्टन चाहिए ना, कैप्टन आरिका और इधर भी चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक दो लोग तो चाहिए, समय पर आना, ध्यान रखना, ध्यान से बैठना, सभी होना ही चाहिए, जो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक ठीक, उस किताब से सीख सकते हैं आप लोग, महाराज जी के पास एक किताब बता रहे हैं, उसको देख लो क्या क्या करना पड़ता है। सुधा सागर जी के शिविरों का एक छपा हुआ पुस्तक है, उससे देख लो क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे, ये पहली बार हो रहा है, बहुत साल के बाद हम ये कर रहे हैं। हमने किया था एक बार इस प्रकार के शिविर को, जहाँ पर 350 घर थे राजस्थान में, खांडू कॉलोनी में, जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किनारे पर, ऐसा ही ये जैसे है ना, ये कॉलोनी एकदम साइड में है, वैसे ही खांडू कॉलोनी भी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा जिले के एकदम किनारे पर है। वहाँ पर 350 घर थे, 350 लोगों ने, घरों ने, सब ने मिलकर के एक निर्णय से ये नियम लिया था कि हम 10 दिन दुकान नहीं खोलेंगे, सर्विस वाले सर्विस पर नहीं जाएंगे, छुट्टी लेंगे। एक भी दुकान नहीं खुली थी, 350 घर थे, 350 के 300 घर दुकान नहीं खोला उन्होंने। बीच में एक दो लोगों की शिकायत आ गई कि हमको उसके बिना चलता नहीं, तो सभी लोगों ने मिलकर के पूछा क्यों नहीं चलता, तो ये समस्या है, सांसारिक समस्या है और अपना परिवार चलना तो चाहिए, चिंता मत करो, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तैयार हो गए, वो तैयार हो गए, 10 दिन बैठ गए, और 10 दिन बैठ करके जो आनंद लिया, उस आनंद के बाद तो ये समझ में आएगा आ गया कि जीवन में कुछ है ही नहीं, और सभी लोगों ने पूछा कि ये ले लो ना, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको तो बहुत कुछ मिल गया है ये होता है जीव को, जब तक अपने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो कर्तव्य है, आत्म कर्तव्य है, वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो उधर ही ध्यान रहता है, ऐसा होता है। उसके बाद ये कर रहे हैं, वो वहां पर भी ऐसा ही था कि 350 लोग शुद्ध भोजन करते थे, कुएं का पानी छान करके लाया हुआ, जीवाणी छोड़ करके बनाया हुआ भोजन जो 350 लोगों के लिए बनता था, और भी पुरुष वर्ग जो था पंडाल में ही रहता था, इधर उधर धर्मशाला, बड़ी धर्मशाला थी उनकी, कुछ धर्मशाला में, कुछ पंडाल में, मंदिर के आस पर आवरण में, घर नहीं जाते थे, वहीं सोते थे, चटाई पर सोते थे। घर में सोना है तो चटाई पर ही नियम लेना है, और ओढ़ने के लिए ये कोई वो लेना, क्या बोलते हैं उसको, बेडशीट्स ओढ़ते हैं क्या, हाँ चादर, चादर, एक चादर और एक चटाई, बस दो ही। चटाई पर सोना। रोज गादी पर सोते होंगे, 10 दिन नींद तो नहीं आएगी। हाँ, कितना मजा है उसमें देखना। जहां पर मच्छरों से बचना आवश्यक है, नहीं तो बुखार आ जाएगा बीच में। ऐसा स्वास्थ्य को बिगाड़ना भी नहीं, संस्कार लेना है और स्वस्थ रखना है स्वास्थ्य को। उपवास शक्त्यानुसार करना, ज्यादा भी नहीं करना। एकासन करना बहुत अच्छा, शरीर स्वस्थ रहता, आकुलता नहीं होती। कर सकते हैं। ज्यादा उपवास भी मन नहीं लगता, किसी भी मन नहीं लगता। स्वाध्याय में, सामायिक में बैठने उठने की शक्ति नहीं रहती, ये काम नहीं करना है। यहाँ पर तो अधिक से अधिक ज्ञान की बातें करना है, तत्व की बातें करना है, संस्कार लेने, आत्मा को सुसंस्कृत बनाना है 10 दिन। देखो, पहली बार है आनंद का जो यह समय अवसर आया है, अवसर से चूकना नहीं, इस अवसर को चूकना नहीं। ठीक, ये 5 मिनट और है। ये देवगति का थोड़ा सा भाग बच गया है, उसको ले लेते हैं। ऊर्ध्व लोकवासी देव 39 प्रकार के होते हैं, जो वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक यानि जो देव विमान, स्वर्ग के विमानों में जन्म लेकर विमानों में रहते हैं, उनका नाम वैमानिक। इन वैमानिकों में दो भेद हैं, कल्पोपपन्न देव और कल्पातीत देव। कल्पोपपन्न देव 16 प्रकार के होते हैं और कल्पातीत देव 23 प्रकार के होते हैं। कल्पोपपन्न किसको कहें? कल्प यानि कल्पना। किसकी कल्पना? इंद्र प्रत्यंद्र आदि की कल्पना। ये इंद्र हैं, इन देवों के ये मालिक हैं, ये इंद्र हैं, ये प्रतीन्द्र हैं। इस प्रकार की कल्पना जो होती है उनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं। और इस प्रकार की कल्पना जहां नहीं होती है उनको कल्पातीत देव कहते हैं। यानी इंद्र प्रतीन्द्र की कल्पना नहीं है और प्रत्येक देव अहमिंद्र है, प्रत्येक देव इंद्र ही इंद्र है। वहां पर ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ऐसा ऐसी कोई कल्पना नहीं है। ये इनका मालिक है और ये इनके आज्ञा में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। उनको कल्पातीत, कल्प से अतीत यानी रहित, इंद्रादि कल्पना से अतीत रहित को कल्पातीत देव कहते हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले देवों को दो तरह के देव समझना चाहिए, कल्पोपपन्न देव और कल्पातीत देव। कल्पोपपन्न देव कहां से कहां तक रहते हैं तो ध्यान रखना, पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव कल्पोपपन्न देव कहलाते हैं। यानी इंद्र प्रतिन्द्र आदि की व्यवस्था, सामान्य देव और विशेष देव आदि की व्यवस्था कहां तक है? 16वें स्वर्ग तक है, इसलिए इनको कल्पोपपन्न कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अहमिंद्र है। कहां पर? 9 ग्रवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले देव ये नियम से अहमिंद्र होते हैं। प्रत्येक देव वहां इंद्र है, इंद्र को छोड़कर सामान्य देव एक भी वहां नहीं रहता, इसलिए कल्पातीत कहा। अब इसमें इंद्र आदि भेद युक्त भेद देव, ठीक है, गुणस्थान 1 से 4 तक। स्वर्गों में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 4 तक। और भवनत्रिक में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 4। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, इनको अधिक से अधिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, किंतु संयम प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए 5वें 6 आदि गुणस्थान नहीं है। अब ये जो 16 स्वर्ग हैं, इनका नाम नीचे बताया है, युगल की अपेक्षा से यहाँ बताया है कि युगल क्रम क्यों, तो युगल कैसे किया है देखो, सौधर्म और ईशान, ये युगल, युगल ने जोड़ी, सौधर्म और ईशान, ये एक युगल हुआ, प्रथम युगल हुआ, सानत कुमार और महेंद्र ये द्वितीय युगल हुआ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर तृतीय युगल हुआ, लांतव कापिष्ट ये चौथा युगल हुआ, शुक्र और महाशुक्र ये पांचवा युगल हुआ, शतार सहस्रार ये छठा युगल हुआ, और वहां पर नंबर दिया है ना, ये 1 2 3 4 ये कितने युगल हो गए, 8 स्वर्ग कितने हो गए, 16 स्वर्ग के बीच में दो दो मिलाकर के एक एक युगल बनाएंगे तो 8 युगल होते हैं। यहाँ पर युगलों का क्रम क्यों रखा, इसलिए रखा कि युगल क्रम से ही आयु होती है, युगल क्रम से ही इंद्र आदि प्रतिंद्र आदि की व्यवस्था होती है, तो सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्गों में कौन सा इंद्र प्रमुख, सौधर्म इंद्र प्रमुख होता है, एक इंद्र होता है और एक प्रतिंद्र, इस प्रकार से प्रथम युगल में एक इंद्र एक प्रतिंद्र, इसी प्रकार द्वितीय युगल में भी एक इंद्र एक प्रतिंद्र, उनका इंद्र का नाम क्या रहेगा, सानत कुमार इंद्र और महेंद्र, महेंद्र स्वर्ग में प्रतिंद्र, इस प्रकार प्रत्येक में एक इंद्र एक प्रतिंद्र एक इंद्र एक प्रतिंद्र होते हैं, तो कितने इंद्र हो गए, तो यहाँ पर हाँ 12 होते हैं, इंद्र जो होते हैं ना वो 12 होते हैं, हाँ वहां पर दो युगल को कमांड करके रहते हैं, कहाँ पर, लास्ट में, लास्ट में हाँ दो में एक है, पहले में एक इंद्र एक प्रतिंद्र, दूसरे में एक इंद्र एक प्रतिंद्र, तीसरे में एक इंद्र एक प्रतिंद्र, चौथे में भी ऐसा, पांचवें में भी ऐसा, लास्ट में सातवें आठवें में, तो ये 4 स्वर्ग हो गए, 4 स्वर्गों में एक इंद्र और एक प्रतिंद्र, इस प्रकार से इंद्रों की संख्या 12 हो गई, स्वर्ग 16 हैं और इंद्र प्रतिंद्र कितने हैं, 12, 12 इंद्र का मतलब 12 हाँ ठीक है ना, 12 इंद्र 12 प्रतिंद्र मतलब ये 24 हो गए, 24 हो गए, 24 और समोशरण में जो इंद्र प्रतिंद्र देव वगैरह आते हैं ना, वे कौन से स्वर्ग तक के देव इंद्र प्रतिंद्र वगैरह आते हैं, 16वें स्वर्ग तक के मात्र आते हैं, ऊपर के 9 ग्रहवेक 9 अनुदिश आदि के क्यों नहीं आते, उनकी गति नीचे अपने विमान तक ही है, ऊपर देखें तो ऊपर भी उनके ध्वजदंड तक है, नीचे गति उनकी नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकते, 9 ग्रहवेक के देव 9 अनुदिश के देव और 5 अनुत्तरवासी देव, ये नीचे मध्य लोक में नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी विक्रिया में वो शक्ति नहीं है इसलिए नहीं आते, विक्रिया में शक्ति नहीं है, और ये विक्रिया कहाँ तक कर सकते हैं, ये 16 स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक तक इनकी विक्रिया हो सकती है, इसलिए ये मध्यलोक में भी आते हैं और अधोलोक में भी जा सकते हैं, विक्रिया की एक मर्यादा होती है, एक शक्ति होती है, कौन देव कहाँ तक अपनी विक्रिया से जा सकता है, इसका एक नियम है, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का उल्लंघन करके वो कुछ भी नहीं कर सकते, उतनी ही शक्ति उनको प्राप्त रहती है, इसलिए 16वें स्वर्ग तक के देव समो शरण में आते हैं, इससे ज्यादा ऊपर के लोग देव लोग नहीं आते, ठीक है, ये हो गए 16 स्वर्ग। अब इधर जो ग्रहवेक विमानवासी देव, ये कैसे, ये इंद्र आदि भेद से रहित हैं, नौ ग्रवेक विमानवासी देव ये नौ प्रकार के हैं, इनमें भी गुणस्थान पहले से चार तक हैं। ग्रवेक में तो पहले गुणस्थान वाले भी हैं और चौथे तक तीनों चारों गुणस्थान वाले हैं, लेकिन अनुदिश और पंच अनुत्तर विमान में केवल चौथा गुणस्थान एक ही है। यहाँ से जो मरण करके इन स्वर्गों में जन्म लेते हैं, नियम से सम्यक्त्व के साथ जाते हैं, जन्म लेते हैं और मरण के अंतिम समय तक भी चौथा गुणस्थान रहता है, आते समय में भी सम्यक दर्शन के साथ ही आते हैं। कहाँ कहाँ के? नौ अनुदिश के और पांच अनुत्तर विमानवासी देव। तो इनके नाम दिए गए हैं, देखो नौ ग्रवेक के नाम, सुदर्शन विमान वासी देव, ये विमानों के नाम है, वैमानिक है ना, ये भी वैमानिक ही कहला। वैमानिक क्यों कहलाते हैं? विमान में रहने से वैमानिक। सुदर्शन विमान वासी देव, अमोघ विमानवासी देव, सुप्रबुद्ध विमानवासी देव, यशोधर विमानवासी देव, सुभद्र विमानवासी देव, सुविशाल विमानवासी देव, सुमनस विमानवासी देव, सौमनस विमानवासी देव, प्रीतिंकर विमानवासी देव, ये नौ प्रकार के विमान हैं और इनमें बहुत सारे देव वहाँ रहते हैं। एक विमान में एक एक ही देव रहता ऐसा नहीं, इन विमानों में बहुत सारे देव रहते हैं। अब नव अनुदिश वासी देव, इनमें चौथा गुणस्थान, पहला विमान का नाम क्या है? आदित्य विमान वासी देव लोग वहां आदित्य विमान में रहते हैं। अर्ची विमान में अर्ची विमान वासी देव रहते हैं। देवों के नाम वहां पर अलग अलग हो सकते हैं, विमान का नाम तो एक ही रहता है। अर्ची माली विमान, वैरोचन विमान, प्रभास विमान, अर्ची प्रभ विमान, अर्ची मध्य विमान, अर्ची रावर्त विमान और अर्ची विशिष्ट विमान। अब पंच अनुत्तर विमान में पांच प्रकार के विमान हैं, उन विमानों के नाम हैं विजय विमान, वैजयंत विमान, जयंत विमान, अपराजित विमान और सर्वार सिद्धि विमान। सर्वार सिद्धि लास्ट वाला है। देवों की जो आयु होती है जगन्य 10,000 वर्ष की आयु होती है। देवगति में उत्पन्न होने वाले जीव को कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही है वहां। सजा, अच्छे जेल में सजा। स्टैंडर्ड लोग स्टैंडर्ड अपराध करते हैं तो स्टैंडर्ड जेल में प्रवेश करते हैं, वहां सुख रहता है, लेकिन वह सुख भी दुख लगता है, क्यों? चाहते नहीं और मिल गया। मुनि स्वर्ग चाहते हैं क्या? मोक्ष चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाना पड़े तो और चले गए तो वहां पर दुख होता है जाने के बाद। हम ये चाहते नहीं थे भाई वैभव, चाहते नहीं थे, अब यहां पर कैसे आ गए हम, इस प्रकार दुख होता है। इस दुख के कारण वे प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे देव मनुष्य लोक में आने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन तरसते तरसते सारा जीवन बहुत धीरे 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 व्यतीत होता है। वो एक वर्ष भी 100 वर्ष के समान लगता और उसी जगह कोई देव अज्ञानी हो तो, मिथ्या दृष्टि हो तो, जैसे ग्रवेक तक दिगंबर मुनि जाता है कहा था ना, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कोई गया वहां जाएगा तो वो कहता है ये छूट रहा है, बड़ी दुख की बात है, ऐसा सोचता है। वहां वो शरीर का सेवक है और ये देव सम्यक दृष्टि देव ये आत्मा का सेवक है। इन दोनों में ये फर्क होता है। समय बहुत हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो मां जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो मां, अब तक हम विषयांद रहे। अब ना हम विषयांद रहे। दस दिन संबंधी